ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू वृद्धि कारकों ने आर्थिक विकास में मदद की। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्पाद व्यापार और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। सामान्य वर्षा के पूर्वानुमान और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के संतोषजनक प्रसार से कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। वस्तु और सेवा कर और ऋण शोधन और दिवाला कानून जैसे ढांचागत सुधार के वांछित परिणाम मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़े होना चाहिए। श्री मोदी ने कथित रूप से नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी लागू करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में देश में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है और नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छिपाया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी स्थापना के बाद से 240 परीक्षाएं आयोजित की हैं। इनमें 4.5 करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। श्री प्रधान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान को निंदनीय बताया जिसमें उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली की आलोचना की थी। सरकार ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी। 2022-23 में यह दर 3.2% रही। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद 3,000 रूपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक 13,94,000 से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें करीब 5.5 लाख महिलाएं हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि 5,03,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें से करीब 2.75 लाख महिलाएं हैं। कर्नाटक सबसे अधिक उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 45% स्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर ली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कुछ मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, लेकिन बिहार इन मापदंडों के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वर्ष 2012 में एक अंतर मंत्रालयी समूह ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने को कहा था। लोकसभा में पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर आज चर्चा हुई। भाजपा के डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए 16 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भेजे जाने वाले एथलीटों पर कुल 470 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।